नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। मुख्य समाचार। भारत ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से लघु और मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग को नए अवसर मिलेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच अबुधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में दूसरे दौर की बातचीत शुरू। अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में 25 शहरों में आयोजित रैलियों का अवलोकन किया। एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में ईशा सिंह और भारतीय महिला टीम ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीते और भारत हरारे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में पहुंचा। और अब समाचार विस्तार से। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में सरकार ने उर्वरक और कृषि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया है। श्री गोयल ने आज राज्यसभा में कहा कि समझौते से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों, कुशल श्रमिकों और उद्योग जगत को नए अवसर मिलेंगे। श्री गोयल ने कहा कि इससे दोनों देशों के बीच व्यापार के नए द्वार भी खुलेंगे।
यह समझौता भारतीय निर्यातकों को विशेष रूप से श्रम प्रधान क्षेत्रों और विनिमय में महत्वपूर्ण तुलनात्मक लाभ भी प्रदान करता है। खाद्य और कृषि क्षेत्र में भारत की प्रमुख संवेदनशीलता का पूर्णतः ध्यान रखा गया है। साथ ही यह साझेदारी लघु और मध्यम उद्यमी MSME उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग के लिए नए अवसर खोलेगी।
श्री गोयल ने कहा कि दोनों देश व्यापार समझौते से संबंधित महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को शीघ्र पूरा करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम के लिए दूसरे दौर की बातचीत आज अबुधाबी में शुरू हुई। यूक्रेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधि इसमें शामिल हैं। यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व वहां के राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा परिषद के सचिव रुस्तम उमरोव कर रहे हैं, जबकि रूस का प्रतिनिधित्व विदेशी सैन्य खुफिया संगठन GRU के निदेशक इगोर कोत्स्युकोव के नेतृत्व वाला दल कर रहा है। हालांकि इगोर कोत्स्युकोव पर युद्ध में उनकी भूमिका के लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगा रखे हैं। क्रेमलिन ने पुष्टि की है कि उसके प्रतिनिधिमंडल में कोई बदलाव नहीं है। वार्ता गुरुवार तक जारी रहेगी। बैठक से पहले रूस के हमलों में यूक्रेन के ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार यूक्रेन के निप्रो पेत्रोवस्क क्षेत्र में रूस के ड्रोन हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। पश्चिम एशिया में अमरीकी सेनाओं की बढ़ती तैनाती से उपजे तनाव की आशंकाओं के बीच अमरीका और ईरान शुक्रवार को ओमान में बातचीत करने पर सहमत हो गए हैं। एक क्षेत्रीय अधिकारी के अनुसार ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर ओमान में बैठक आयोजित करने की मांग की है। ईरान ने कहा है कि वह अपने बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम पर कोई समझौता नहीं करेगा और बातचीत केवल परमाणु कार्यक्रम पर केंद्रित होनी चाहिए। हालांकि अमरीका बातचीत में अन्य मुद्दों को भी शामिल करना चाहता है। अमरीका और संयुक्त राष्ट्र ने युद्धग्रस्त सूडान को मानवीय सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन जुटाने की एक नई पहल करते हुए संयुक्त रूप से सूडान मानवीय कोष की शुरुआत की है। इसमें संयुक्त अरब अमीरात और अमरीका ने 70 करोड़ डॉलर का योगदान किया है। इसका उद्देश्य मौजूदा जारी संघर्ष समाप्त करना और अकाल से बिगड़े हालात को संभालना है। महिला और बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 64वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक न्याय विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों का केंद्रबिंदु है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हुए उन्होंने अधिकार आधारित, समावेशी और जन केंद्रित विकास के दृष्टिकोण पर बल दिया। उन्होंने सत्र में 80 करोड़ से अधिक लोगों के लिए खाद्य सुरक्षा और 55 करोड़ से अधिक नागरिकों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा सहित प्रमुख सामाजिक सुरक्षा पहलों की रूपरेखा प्रस्तुत की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के 25 शहरों में आज भीषण ठंड के बाद भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हिंसा के विरोध में कई रैलियां आयोजित की गईं। इसका उद्देश्य बांग्लादेश में हिंदू और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रही हिंसा तथा उत्पीड़न का विरोध करना था। समुदाय के सदस्य, धार्मिक नेता और जागरूक नागरिक सार्वजनिक स्थानों पर एकत्र हुए और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की मांग की। कड़ाके की ठंड और भीषण बर्फबारी के बाद भी बड़ी संख्या में लोग प्रदर्शन में शामिल हुए। लोगों ने बांग्लादेश में भीड़ द्वारा हिंसा, आगजनी, यौन हिंसा और लक्षित हत्याओं की घटनाओं के बारे में लोगों को जागरूक किया। आयोजकों ने एकता, अहिंसा और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया। मानवाधिकार सहायता संस्था की रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के 17 महीने के कार्यकाल में मानवाधिकारों की स्थिति बेहद चिंताजनक रही है। संस्था ने ढाका में आज नेशनल प्रेस क्लब में 2024 के 5 अगस्त से मानवाधिकार की स्थिति और चुनाव पूर्व हिंसा के अपने आकलन को प्रस्तुत करते हुए ये निष्कर्ष जारी किए। रिपोर्ट में इस अवधि के दौरान 1400 से अधिक राजनीतिक हिंसा की घटनाओं का विवरण है, जिसके कारण 195 लोगों की मौत हो गई। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनोर कुमार दिसानायक ने आज कोलंबो में गंगा रामिया मंदिर में भगवान बुद्ध के पवित्र देवनी मोरी अवशेषों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। ये इन अवशेषों का पहला अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन है। समारोह में प्रधानमंत्री डॉ हरिणी अमरा सूर्य ने इस पवित्र अवसर को संभव बनाने के लिए भारत सरकार और प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 7 और 8 तारीख को मलेशिया की सरकारी यात्रा पर रहेंगे। ये यात्रा मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम के निमंत्रण पर हो रही है। ये उनकी मलेशिया की तीसरी यात्रा होगी। एक रिपोर्ट।
अगस्त 2024 में भारत मलेशिया द्विपक्षीय संबंधों को व्यापक रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान प्रधानमंत्री मलेशिया के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के सदस्यों और उद्योग तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। इस यात्रा के साथ ही 10वां भारत मलेशिया CEO फोरम भी आयोजित होगा। भारत और मलेशिया के बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों पर आधारित दीर्घकालिक मित्रता है। मलेशिया में 29 लाख से अधिक भारतवंशी रहते हैं। भारत मलेशिया संबंध बहुआयामी और विकसित हो रहे हैं। ये यात्रा दोनों नेताओं के लिए द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। इनमें व्यापार और निवेश, रक्षा, सुरक्षा और समुद्री सहयोग, डिजिटल तथा वित्तीय प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और संस्कृति शामिल हैं। विश्व दर्पण के लिए विशाल शर्मा।
ईशा सिंह ने एशियाई राइफल और पिस्टल चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीत लिया है। नई दिल्ली में आज फाइनल में उन्होंने चैंग येन चिंग और यू एन वैन को हराया। वहीं ईशा, मनु भाकर और सुरुचि सिंह ने महिला टीम स्पर्धा का भी स्वर्ण पदक जीता। पुरुष वर्ग में सम्राट राणा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में भारत ने अंडर 19 एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में जगह बना ली है। दूसरे सेमीफाइनल में आज भारत ने अफगानिस्तान को हराया। अफगानिस्तान के 311 रन के लक्ष्य को भारत ने 42वें ओवर में 7 विकेट रहते ही हासिल कर लिया। एरोन जॉर्ज को 115 रन की शतकीय पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फाइनल में शुक्रवार को भारत का सामना इंग्लैंड से होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार समझौते से लघु और मध्यम उद्यमों, उद्यमियों, कुशल श्रमिकों और उद्योग को नए अवसर मिलेंगे। यूक्रेन और रूस के बीच अबुधाबी में अमेरिका की मध्यस्थता में दूसरे दौर की बातचीत शुरू। अमेरिका ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों पर हो रहे अत्याचार के विरोध में 25 शहरों में आयोजित रैलियों का अवलोकन किया। और भारत हरारे में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराकर अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल पहुंचा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।